एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
हे मसीहा मेरे, हे मसीहा मेरे, हे
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता। हमारे मनों को, हमारे आत्माओं को खोल दे पिता परमेश्वर, हमें तेरे वचन को समझने के लिए मदद कर। मेरे श्रोताओं के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उन्हें तो तेरा वचन के द्वारा बहुत आय से आशीषित कर। हम सबों को तेरा पवित्र आत्मा से भर दे। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा से चला, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है यीशु की शिक्षाएं और महान विवाद। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह हम पढ़ते हैं मत्ती 11 का 28 में। जब हम महान विवाद विषय के बारे में सोचते हैं, तो हम इसे भव्य व्यापक शब्दों में सोचते हैं, यानी यह एक बड़ी तस्वीर है। इसे मेटा कथा कहा जा सकता है, एक ऐसी कहानी जो वास्तविकता के एक बड़े हिस्से को शामिल करती है और समझाती है। स्थानीय कथा या कहानी के विपरीत, जो दायरे में बहुत सीमित कुछ समझाती है। उदाहरण के लिए, पॉल रेवर की प्रसिद्ध सवारी एक स्थानीय कथा है, जो अमेरिकी क्रांति की बहुत भव्य और बड़ी कथा के विपरीत है। और फिर भी, चाहे महान विवाद का विषय कितना भी भव्य और व्यापक क्यों ना हो और मुद्दे कितने भी विशाल क्यों ना हो, यह प्रतिदिन यहाँ पृथ्वी पर हमारे अपने जीवन में हम ईश्वर प्रलोभन और दूसरों के साथ कैसे संबंध रखते हैं में खेला जाता है। जिस तरह लोगों का दैनिक जीवन राजनीति और अर्थशास्त्र की भव्य और बड़ी घटनाओं से प्रभावित होता है, कभी कभी बहुत हद तक उसी तरह हम में से प्रत्येक को महान विवाद से भी सामना करना पड़ता है। आज हम यीशु की कुछ शिक्षाओं को व्यवहारिक विषयों पर देखेंगे, क्योंकि हम सभी महान विवादों के बीच परमेश्वर की इच्छा को जानने और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहला हम देखेंगे विश्राम के कई प्रकार हैं। हम मत्ती 11 का 29 में पढ़ते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्यारो, उसका जुआ उठाने से हमारी आत्माओं को कैसे विश्राम मिल सकता है? यह प्रस्ताव यीशु के लोगों को शत्रुओं से मुक्त करने के मिशन के बहुत बड़े लक्ष्य के बीच एक व्यक्तिगत आयाम की ओर इशारा करता है। उनके शब्द वास्तव में यिर्मयाह से लिए गए हैं, जो लोगों से वादा करता है कि अगर वे आसपास के देशों के बुत परस्ती के बजाय अपने पूर्वजों के धर्म में लौटते हैं, तो उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। यह हम पाते हैं यिर्मयाह 6:16 में। विश्राम की अवधारणा पवित्र शास्त्र में बहुत समृद्ध है। इसकी शुरुआत खुद परमेश्वर से होती है। जब उसने सृष्टि का कार्य पूरा किया, तो उसने विश्राम किया। यह हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:2 में। उसके विश्राम ने सबत के विश्राम की शुरुआत की, जिसे साप्ताहिक रूप से मनाया जाता है। विश्राम को पूरे साल वार्षिक उत्सवों, उदाहरण के लिए व्यवस्था 16:31 के दौरान, हर 7 साल में भूमि के विश्राम, निर्गमन 23:11 और हर 50 साल में जयंती के अवसर पर मनाया जाता था, जब दासों को मुक्त किया जाता था और ऋण माफ किए जाते थे। व्यवस्था 25:10 में हम पाते हैं। प्यारो, विश्राम की सराहना तब की जा सकती है जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ मौजूद होता है। निर्गमन 33:14 में हम यह पा सकते हैं, जहां ना तो कोई विरोधी ना कोई बुरी बात होती है, 1 राजा 5:4, ना ही कोई शत्रु, व्यवस्था विवरण 25:19। परमेश्वर ने अपने लोगों को जो देश दिया था, वहां विश्राम का आनंद लिया जाता था, यहोशू 1:13। खासकर जब लोग बंधुआई और निर्वासन سے واپس لوٹے، ارمیہ 30:10۔ وشرام اجنبیوں کے ساتھ اتتھیا میں بھی ساجھا کیا جاتا تھا، اور ستھر پریوارک جیون کا آنند لینے میں بھی روت 1:9۔ حالانکہ پرمیشور کے لوگوں کو قید میں آرام نہیں ملتا، نرگمن 5:4-5، پلاپ گیت 1:3، دشٹوں کو آرام نہیں ملتا کیونکہ وہ اشانت سمندر کی طرح آرام نہیں کر سکتے، یسعیاہ 57:20۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک ماتر آرام مرتیو اور قبر ہے، ایوب 3:11-13۔ پرکاشت واقعہ 14:11 میں انتیم دنوں میں مہان بیواد کے غلط پکش کے لوگوں کے لیے آرام کے بارے میں ایک شکتیشالی چیتاونی بھی ہے۔ یسوع دوارا دیا جانے والا وشرام ایک بہت ہی ادار پیکج ہے، اس میں سبت کا اپہار شامل ہے جو ہمیں سرشتکرتا کے ساتھ سمے بتانے کی انومتی دیتا ہے۔ مسیح دوارا دیا جانے والا وشرام ہماری کھوئی ہوئی استھتی کو پہچانتا ہے اور ہمیں ہر طرح سے پنرستھاپت کرتا ہے، اور جب ہم غلطی کرتے ہیں، جیسا کہ ہم غلطی میں پڑتے ہیں، تب بھی ہمارے پاس، ہمارے ادھارکرتا کے پاس وشرام کی جگہ کا آشواسن ہوتا ہے۔ دوسرا ہم دیکھیں گے روپن اور کٹائی۔ یسوع کے بیج بونے والے کے دشٹانت میں مہان بیواد کا وشے انترنہت ہے۔ سوسماچار سندیش کے پرتی 4 پرکار کی پرتکریاؤں کی سوچی یہ درشاتی ہے کہ دنیا میں صرف اچھے اور برے لوگ ہی نہیں ہیں، جیون اس سے کہیں زیادہ جٹیل ہے، اور اس لیے ہمیں ساودھان رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں سے کیسے سمپرک کریں جو سوسماچار کے پرتی ویسا پرتکریا نہیں دیتے جیسا ہمیں لگتا ہے کہ انہیں کرنا چاہیے۔ متی 13:3-8 اور پھر متی 13:18-23 میں ہم یہ پاتے ہیں۔ آتماؤں کے لیے لڑائی واستوک ہے، اور دشمن لوگوں کو ادھار سے دور کرنے کے لیے ہر سمبھو طریقے کا اپیوگ کرتا ہے۔ ادھارن کے لیے سڑک کے کنارے گرتے بیج کے سندرب میں ایلن جی وائٹ نے لکھا، شیطان اور اس کے سورگدوت ان سبھاؤں میں ہیں جہاں سوسماچار کا پرچار کیا جاتا ہے، جبکہ سورگ کے سورگدوت پرمیشور کے وچن سے دلوں کو پربھاوت کرنے کا پریاس کرتے ہیں۔ دشمن وچن کو نشپربھاوی بنانے کے لیے سترک رہتا ہے، کیول اپنے دویس کے برابر کی گمبھیرتا کے ساتھ وہ پرمیشور کی آتما کے کاریہ کو وفل کرنے کا پریاس کرتا ہے، جبکہ مسیح اپنے پریم سے آتما کو آکرشت کر رہا ہے، شیطان اس ویکتی کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے جو ادھارکرتا کی تلاش کرنے کے لیے پریرت ہوتا ہے، کرائسٹ آبجیکٹلیشن پرسٹ 44 میں پایا جاتا ہے۔ سوسماچار کے بیج بوتے سمے مانویہ پریاس ہمیشہ سیمت ہوتے ہیں، ہمیں ہر جگہ بونا چاہیے، ہم یہ طے نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سی مٹی اچھی ہے اور کون سی بری۔ کھر پتواروں کا دکھنا بس یہی درساتا ہے کہ ہم کم سے کم اپیکشت استھانوں پر برائی کو بڑھنے سے روکنے میں اسمرتھ ہیں۔ یہ پرشٹھ بھومی میں کام کرنے والا فصل کا پربھو ہے جو یہ سنشچت کرتا ہے کہ جو لوگ بچائے جا سکتے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور ہمیں اس پر بھروسہ کرنا سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا کام کرے گا۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اور پرمیشور اپنا کام کرے گا، اس پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آئیے ہم آگے چٹان پر عمارت کے وشے میں چرچا کریں۔ ہمارے چاروں اور گھٹت ہو رہے برہمانڈیا سنگھرش میں ہم کہاں کھڑے ہیں، اس مدعے کو چٹان پر گھر بنانے والے ویکتی کے دشٹانت میں بہت ہی ویکتیگت بنا دیا گیا ہے۔ اسے ہم متی 7:21-27 میں پاتے ہیں۔ متی 7:21-27 میں ہم پاتے ہیں کہ یسوع ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو انہیں کہتے ہیں، ہم نے آپ کے نام پر پرچار کیا، ہم نے تیرے نام سے بڑے بڑے چمتکار کیے، پر یسوع ان کو جواب دیتے ہیں، میں تمہیں نہیں جانتا ہوں۔ یہ بڑی ڈراؤنی بات، जब आप इस कहानी की कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? चट्टान कहाँ है और रेत कहाँ है? कुछ लोगों के लिए रेत केवल समुद्र तट पर ही पाई जाती है, लेकिन यह कहानी शायद समुद्र के किनारे के निवास के बारे में नहीं है। अधिक संभावित स्थान कोमल लुढ़कती पहाड़ियों के बीच है, जिस पर अधिकांश गांव बसे हुए थे, कहीं घाटी के किनारे। यीशु दो घरों का वर्णन करता है। एक घर सतह पर बना है, जबकि दूसरे घर की नींव चट्टान तक जाती है। आप देखिए लूका 6:48 में, जब तक पहाड़ियों पर बारिश नहीं होती और घाटी में अचानक बाढ़ नहीं आ जाती, तब तक दो घरों के बीच अंतर बताना संभव नहीं है। घर बनाने वालों में से एक के लिए यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि घर मजबूती से टिका हुआ है, लेकिन दूसरे के लिए यह एक समस्या है। सुरक्षित नींव के बिना सतह पर बना घर बाढ़ के पानी का आसान शिकार बन जाता है। यीशु ने यह दृष्टांत इसलिए बताया क्योंकि वह जानता था कि हम खुद को कितना मूर्ख बनाते हैं। एक गंभीर संघर्ष चल रहा है और बिना सहायता के हमारे पास इससे बचने की कोई संभावना नहीं है। यीशु ने बुराई के खिलाफ जीत हासिल की है और इसलिए उसे चट्टान कहा जाता है। यीशु को चट्टान कहा जाता है। सचमुच में वह चट्टान के तौर पर है। बुराई के खिलाफ या व्यक्तिगत लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन केवल तभी जब हम अपने जीवन को दृढ़ता से उस पर आधारित करते हैं, प्रभु यीशु पर आधारित करते हैं, और हम केवल उसकी आज्ञाकारिता के माध्यम से ही उस पर आधारित हो सकते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन्हें मानता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं उसे उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह समझूंगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मत्ती 7:24। यह इतना सरल है। हालांकि विश्वास एक महत्वपूर्ण घटक है। बाइबल कहती है कि बिना काम के विश्वास मृत है, याकूब 2:17 में। और इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि यह वास्तव में कितना मृत है। आगे चलिए हम देखते हैं यीशु का कथन न्याय नहीं करने के विषय में कहता है। मत्ती 7 में हम पाते हैं, यीशु ने अपने मंत्रालय के शुरुआती दिनों में पहाड़ी उपदेश दिया। यह क्रांतिकारी था। शुरुआत के लिए उन्होंने आम लोगों से कहा कि वे परमेश्वर की नजर में मूल्यवान और धन्य है, मत्ती 5:3-12, और वे नमक मत्ती 5:13 और ज्योति मत्ती 5:14-16 हैं। दो आध्यात्मिक मूल्यवान वस्तुएं। उन्होंने परमेश्वर के नियम के महत्व के बारे में बात की, मत्ती 5:17-19। फिर भी दूसरों को अपने अच्छे व्यवहार से प्रभावित करने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी दी, मत्ती 5:20 में। यीशु ने आगे बताया कि नैतिकता इस बात से निर्धारित होती है कि कोई व्यक्ति क्या सोचता है, ना कि केवल उसके कार्यों से, मत्ती 5:21-28 में। हालांकि कार्यों को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए, मत्ती 5:29-30। संपूर्ण उपदेश को पढ़ने पर यह देखा जा सकता है कि उन्होंने मानव अस्तित्व और रिश्तों के संपूर्ण विस्तार को शामिल किया है। देखिए मत्ती 5:1-27:27। यीशु ने कहा, न्याय ना करो ताकि तुम पर भी न्याय ना किया जाए। अपने आप को दूसरे लोगों से बेहतर मत समझो और खुद को उनका न्यायी मत बनाओ। क्योंकि तुम उद्देश्य को नहीं समझ सकते, इसलिए तुम दूसरे का न्याय करने में असमर्थ हो। उसकी आलोचना करके तुम खुद पर ही दंड लगा रहे हो, क्योंकि तुम दिखाते हो कि तुम शैतान के साथ भागीदार हो, जो भाइयों पर आरोप लगाता है। प्रभु कहते हैं, अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को साबित करो, यह हमारा काम है। चलिए हम आगे गौर करते हैं इस बात पर जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, यह मत्ती 28:20 में पाया जाता है। मत्ती ने अपने सुसमाचार का विवरण यीशु द्वारा कहे गए कुछ सबसे आश्वस्त करने वाले शब्दों के साथ समाप्त किया, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ यहाँ तक कि जगत के अंत तक। यह हम पाते हैं मत्ती 28 का 20 में। व्यवहारिक रूप से हमारे अपने जीवन में, हमारे अपने संघर्षों, असफलताओं और निराशाओं में हमें परमेश्वर के इस आश्वासन के वचन को नहीं भूलना चाहिए। यह दिलचस्प है कि मत्ती ने अपने सुसमाचार की शुरुआत ऐसे ही शब्दों से की है, सभी पूर्वजों को सूचीबद्ध करने के बाद और एक स्वर्गदूत द्वारा पहले मरियम और फिर यूसुफ से मिलने की कहानी के बाद मत्ती बताते हैं कि जन्म लेने वाला बच्चा इमानुएल होगा, जो हमारे साथ परमेश्वर है। उसका मतलब है मत्ती 1:23, वह बालक जिसका नाम था इमानुएल, उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने वचन दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पवित्र शास्त्र में कई बार उसने इसहाक उत्पत्ति 26:24 और याकूब उत्पत्ति 28:15 और यिर्मयाह 1:8-19 और इज़राइल के बच्चों यशायाह 41:10 और 43:5 के साथ रहने का वादा किया। इनमें से कई संदर्भों का संदर्भ कठिनाई और दबाव के समय का है, जब परमेश्वर के शब्द सबसे अधिक प्रासंगिक होंगे। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। एक समांतर श्लोक में समान शब्दों का उपयोग किया गया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। यह हम पाते हैं इब्रानियों 13:5 में। कुछ ही श्लोक बाद में यह जोड़ा गया है, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक ही है, युगानु जिसे हम पाते हैं इब्रानियों 13:8 में। यह वादा भी कई बार दोहराया गया है। यह वास्तव में उस अवसर से आता है जब मूसा ने यहोशू को नेतृत्व सौंपा था, व्यवस्था विवरण 31:6-8 में हम पाते हैं। और परमेश्वर ने मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू से यह वाक्यांश दोहराया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। जब दाऊद ने राज्य सुलेमान को सौंप दिया तो उसने भी सुलेमान से कहा कि परमेश्वर सुलेमान को ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, पहला इतिहास 28:20। यीशु जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, ने हमारे पूर्वजों को विश्वास का दृढ़ आश्वासन दिया। उन्हें कठिनाई और परीक्षण का सामना करना पड़ा, या वे अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने वाले थे, फिर भी उन्हें परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति का आश्वासन दिया गया था। समय के अंत में मसीह के कलीसिया के लिए यह आश्वासन महत्वपूर्ण है। यीशु का वादा कि वह हमारे साथ अंत तक रहेगा, शिष्य बनाने, बपतिस्मा देने और सिखाने के संदर्भ में है, इसलिए यहीं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लोगों को महान विवाद में हराने वाले पक्ष में जाने से बचाने की खुशी पर लियोन विसेल टियर ने लिखा कि यह कहानी दुनिया की सबसे दुखद कहानियों में से एक है। उन्होंने एसबी नामक एक अंग्रेज के बारे में बताया जो जन्म से ही अंधा था। हालांकि अच्छी खबर यह थी कि 52 साल की उम्र में एसबी का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ, जिससे उसे दृष्टि मिली। अपने जीवन में पहली बार एसबी देख पाया, उसके लिए यह अविश्वसनीय रूप से रोमांचक रहा होगा कि आखिरकार वह दुनिया देख पाया। हालांकि लेखक विसेल्टियर ने कहा, एसबी को दुनिया नीरस लगती थी। जाहिर तौर पर वह एक अधिक परिपूर्ण दुनिया की उम्मीद कर रहा था। उसने धीरे धीरे सक्रिय जीवन जीना छोड़ दिया और 3 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। हमारी दुनिया एक क्षतिग्रस्त जगह है। इस दुनिया को बेहतर बनाने के हमारे सभी प्रयासों के बावजूद यह और भी बदतर होने वाला है। इसलिए हमें छुटकारे की प्रतिज्ञा की आवश्यकता है, जो हमें केवल महान विवाद में मसीह की विजय से ही मिलती है। एक ऐसी विजय जो क्रूस पर प्राप्त की गई है और जो हम सभी को मुफ्त में प्रदान की गई है। तो प्यारों, आइए हम उस विजय को ग्रहण करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर विजय पाया है। आइए हम उसके पास आते हैं और इस विजय में शामिल होते हैं। परमेश्वर आपके साथ रहे और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें, जो हमें प्रतिज्ञा करते हैं कि वह हमारे साथ सदैव रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं पिता। हम सबों को तू ग्रहण कर और तेरे वचन के अनुसार चला, हम सबों को तू आशीषित कर पिता। हम जानते हैं तू हमारा परमेश्वर है, तू हमें चलाना चाहता है, हमें तेरे पीछे चलने के लिए राजी होने वाला बना। तेरा आत्मा के द्वारा हमें प्रेरित कर पिता। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।